अपने में जो वस्तु बुद्धि है अथवा वस्तु में जो अहम बुद्धि है, इसी से वस्तुओं का महत्व बढ़ता है, वस्तुओं का संबंध होता है। तो वस्तु में अहम बुद्धि न हो अथवा अहम में वस्तु बुद्धि न हो, ये इसका उपाय है। अब वस्तु में अहम बुद्धि अथवा अहम में वस्तु बुद्धि है क्या, असल में इस पर विचार करना चाहिए। पहले वस्तु के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। जैसे इस वस्त्र को आप वस्तु कहेंगे, क्यों वस्तु कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति हुई है, इसमें परिवर्तन है और अंत में इसका आदर्शन है। उत्पत्ति कैसे हुई है कि प्राकृतिक पदार्थों से और शारीरिक बौद्धिक श्रम से। अब शारीरिक बौद्धिक जो श्रम की सामर्थ्य किससे मिली है तो कहना पड़ेगा वो भी प्राकृतिक है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नहीं है। तो तात्पर्य ये निकला कि प्राकृतिक पदार्थों को जब हम अपना मान लेते हैं अथवा जब पदार्थों में अहम बुद्धि स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं देवीदत्त हूं, अग्रवाल हूं, अमुक प्रांत का रहने वाला हूं, इत्यादि इत्यादि। और फिर पूछा जाए कि जिसके संबंध में आप परिचय दे रहे हैं ये परिचय किसका है, तो वैसे तो आप कहेंगे मेरा है, लेकिन मेरा आप सिखा जिसके अंदर पूछे कोई मेरा क्या चीज है, तो आप अपना हाथ या अपना शरीर उसको कहेंगे देखो ये मैं हूं। तो शरीर एक वस्तु है जो कि संसार रूपी सागर की एक बूंद है। किसी भी काल में संसार से शरीर अलग नहीं हो सकता। जैसे कोई भी लहर किसी भी काल में सागर से अलग नहीं होती, लहर के रूप में रहे तो और लहर के रूप में न हो तब भी वो सागर से अभिन्न रहती है, अभेद रहती है। सागर जिस जाति का है, लहर भी उसी जाति की है, उसी प्रकार शरीर जिस जाति का है, संसार भी उसी जाति का है, या संसार जिस जाति का है, शरीर भी उसी जाति का है। शरीर और विश्व में विभाजन संभव नहीं है। तो जब शरीर और विश्व में विभाजन नहीं है तो हम अपने को वस्तु के साथ क्यों मिला लेते हैं, या अपने को वस्तु क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तो जब प्राणी अपने को वस्तु स्वीकार कर लेता है तब उसके जीवन में काम का उदय हो जाता है, यही पहचान है वस्तु की। और जब काम का उदय हो जाता है तब परिस्थितियों से, वस्तुओं से, जिसे आप अलग अलग मानते हैं, कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने को अच्छा मानते हैं, अस्वस्थ है तो अपने को बुरा मानते हैं, या हमारे पास संपत्ति है तो हम अपने को सुखी मानते हैं या दृढ़ता आगे तो दुखी मानते हैं, या हमारी समझ जरा ठीक है तो हम अपने को अच्छा मानते हैं, अगर समझ दुर्बल हो गई तो बुरा मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर यह है तो सब वस्तु न, समझ भी एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, तन भी एक वस्तु है, प्राण भी एक वस्तु है, संसार जिसे आप कहते हैं वो भी एक वस्तु है। क्यों? तो जब तक हम वस्तु में अहम बुद्धि रखेंगे अथवा अहम में वस्तु बुद्धि रखेंगे, यानी अपने को वस्तु मानेंगे अथवा वस्तु को अपना मानेंगे कि वस्तु ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो मानेगा वो वस्तुओं की दासता से मुक्त नहीं हो सकता। तो हम वस्तु किसी भी काल में नहीं है, क्या है ये बात अलग, पर कम से कम वस्तु नहीं है। तो जो अपने में से वस्तु भाव को निकाल देता है या वस्तु में से अपने को हटा लेता है, जो भी, वो वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जाता है। तो बात तो इतनी सी है कि अपने में वस्तु बुद्धि का भास न रहे, सत्यता न रहे, सद्भाव न रहे और वस्तु में अहम बुद्धि न रहे। तो अब ये कैसे न रहे कि वस्तु का ज्ञान वस्तु को नहीं हो सकता, जैसे समझ का ज्ञान समझ को नहीं होता, मन का ज्ञान मन को नहीं होता, इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता, विषयों का ज्ञान विषयों को नहीं होता। इंद्रियों को विषयों का ज्ञान होता है, मन को इंद्रियों का ज्ञान होता है, बुद्धि को मन का ज्ञान होता है और किसी को बुद्धि का ज्ञान होता है। जो बुद्धि का प्रकाशक है उसे बुद्धि का ज्ञान होता है। तो जिससे जिसका ज्ञान होता है वो उसी के किसी एक अंश में रहता है। तो जिन इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है वे विषय इंद्रियों के किसी एक अंश में रहते हैं, और जिस मन से इंद्रियों का ज्ञान होता है वो इंद्रियां मन के किसी एक अंश में रहती हैं, और जिस बुद्धि से मन का ज्ञान होता है वो मन बुद्धि के किसी अंश में रहता है, और बुद्धि और जिस ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान होता है वो बुद्धि उस ज्ञान के किसी एक अंश में रहती है। तो भाई सबसे जो विभू और महान वस्तु क्या है कि वो ज्ञान कि जिस ज्ञान को बुद्धि का ज्ञान है, क्यों उसी के किसी एक अंश में बुद्धि है और बुद्धि के किसी एक अंश में मन है और मन के किसी एक अंश में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के किसी अंश में समस्त विषय हैं। तो बुद्धि का ज्ञान जिस ज्ञान को है वो ज्ञान क्या है? अगर उस ज्ञान के साथ कोई कहे हम उस ज्ञान में अपनी अहम बुद्धि क्यों न कर लें, तो भाई ज्ञान में अहम बुद्धि करने का फल क्या होगा कि जो ज्ञान अनंत है समस्त बुद्धियों का जो प्रकाशक है वो एक सीमित मालूम पड़ेगा। तो ज्ञान में अहम बुद्धि, बोले अहम में ज्ञान बुद्धि क्यों न स्वीकार कर लें कि भाई अगर अहम में ज्ञान बुद्धि स्वीकार करोगे तो वो ज्ञान एक सीमित होकर के भेद उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। ओम नमो नारायण। इसलिए उस ज्ञान में न तो अहम बुद्धि को स्वीकार कर सकते हैं और न उस ज्ञान में अहम बुद्धि स्वीकार कर सकते हैं। आप कहें ये तो एक आपकी न अपनी कल्पना है, लोग तो ये मानते ही हैं कि जो बुद्धि का प्रकाशक है वही मेरा अपना स्वरूप है और वही मैं हूं। तो जो लोग मानते हैं वो तो है साधन, उसमें तो अपने कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ज्ञान है उसमें मैं लगाने से कोई ज्ञान का महत्व बढ़ता है क्या? कोई ज्ञान में पर निकल आएंगे, कोई विशेषता आ जाएगी? तो मैं तो नहीं समझता हूं कोई विशेषता आ जाएगी, सिवाय इसके एक शब्द जाल में फंस करके आप जो ज्ञान बुद्धि का प्रकाशक है उसके साथ अहम को मिला दीजिए तो वो ज्ञान बुद्धि का विषय बन जाएगा। अरे आप समझते ही तो कहते हैं कि देखिए जितने दर्शनकार हैं, भाई देखो मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी के खंडन को लेकर तो कर नहीं रहा हूँ, न मेरी नीति है, बात कर रहा हूँ खाली विचार विनिमय की दृष्टि से। तो आप जिसने बुद्धि के प्रकाशक का नाम रखा वो नाम बुद्धि का विषय बना कि नहीं? बुद्धि का विषय बना कि नहीं? यानी जितने बादों की स्थापना हुई वो सब बुद्धि के अंतर्गत है कि बुद्धि के बाहर है? चाहे कोई बाद हो,
बुद्धि का साक्षी कहा?
अरे बाबा बुद्धि का साक्षी कहा, उसका नाम में क्या कौन है बुद्धि का साक्षी? प्रश्न तो वही है, आप कहो आत्मा तो आत्मा तुम्हारा बुद्धि का विषय हो गया, वाणी का विषय हो गया। तात्पर्य कहने का ये था, विचार करके देखें कि जिसका जो विषय होता है वो उसके किसी एक अंश में होता है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वैज्ञानिक सत्य है, किसी की कल्पना नहीं हो सकती। तो समस्त सृष्टि इंद्रियों के किसी एक अंश में है श्रीमान, और समस्त इंद्रियां मन के किसी एक अंश में है, और समस्त मन बुद्धि के किसी एक अंश में है, और समस्त बुद्धि अपने प्रकाशक के किसी अंश में है। तो जिस सृष्टि की आप नापतोल नहीं कर सकते बुद्धि की गणना से, अगर आप नापतोल कर सकें कि भैया हम ये जानना चाहते थे इस एक आम के फल में कितने आम की वाटिकाएं छिपी हैं, किसी विज्ञान वेता से कहें भाई इसका गणित लगा दो, हमें नहीं लगा सकता। वो कहेगा इसमें से एक पेड़ निकलेगा, एक में जाने कितने पेड़ आम लगेंगे, हर आम में यानी कहेगा कि हर चीज अनंत है, कोई सीमा कर सकता है? बोले एक आदमी के भी एक आदमी से कितने आदमी पैदा हो सकते हैं, जबकि वीर के कीड़े से एक आदमी बनता है, तो एक आदमी में कितने वीर के कीड़े होते हैं, अगर हर कीड़े को बनाया जाए तो कितना बनेगा? किसी चीज का आप हिसाब नहीं लगा सकते, गलत नहीं कर सकते। सबको कहेंगे कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका हिसाब नहीं लगता, हर वस्तु अनंत है। तो वो सृष्टि जिसकी कि एक एक वस्तु अनंत है उसमें न जाने कितनी वस्तुएं आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। सृष्टि की हर चीज अनंत, सृष्टि की हर चीज अनंत और सृष्टि अनंत, और वो अनंत सृष्टि इंद्रियों के किसी एक अंश में, तो इंद्रियां कितनी अनंत होंगी? कोई सीमा होगी इसकी? अच्छा और जो समस्त इंद्रियां जिसके किसी एक अंश में अनंत सृष्टि, समस्त इंद्रियां जिसके किसी एक अंश में अनंत सृष्टि, तो वो इंद्रियां जिस मन के किसी एक अंश में है, वो मन कितना अनंत होगा। और वो मन, वो अनंत मन जिसके अनंत अनंत इंद्रियां जिसके किसी एक अंश में और समस्त सृष्टि जिसके किसी एक अंश में, और वो मन कितना बड़ा होगा क्योंकि बुद्धि के किसी एक अंश में, और वो बुद्धि कितनी बड़ी होगी। तो जो लोग बुद्धि के प्रकाशक की नाप तौल करते हो, मैं करना भी तक नाप ही है ना, आप ये नहीं कह सकते कि कहने का साहब वो मैं हूँ, अगर मैं लगा दिया तो सीमा है इसमें। मैं तो नहीं कहता हूँ, कहता हूँ बुद्धि का जिस ज्ञान को बुद्धि का ज्ञान है, वो उस ज्ञान के साथ मैं और तू नहीं मिला सकते आप। नहीं, आपको ऐतराज हो, आप मुझको मैं से ऐतराज है, तो किसी को तू से ऐतराज हो तो मेरा कोई आसक्ति थोड़ी है तू कहने में। कहने का तो निवेदन केवल इतना है कि बुद्धि के किसी एक अंश मात्र में अनंत सृष्टि है, और वो बुद्धि जिस ज्ञान के किसी एक अंश में है, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं कर सकता, उसका कोई बुद्धि से वर्णन नहीं कर सकता, अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा, कह नहीं सकते। तो जिसको कह नहीं सकते, लेकिन एक नियम है, एक बड़ा भारी नियम है कि जो जिसके जो 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 जो, जो जिसके किसी एक अंश में होता है, वो उसका वो उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे इंद्रियां विषय जो है, वो इंद्रियों में विलीन हो सकते हैं, क्यों? इंद्रियों के किसी एक अंश में है। इंद्रियां मन में विलीन हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि इंद्रियां मन के किसी एक अंश में है। मन बुद्धि में विलीन हो सकता है, क्योंकि मन बुद्धि के किसी एक अंश में है, और बुद्धि अपने प्रकाशक में विलीन हो सकती है, क्योंकि उसके किसी एक अंश में है। ये क्या है? इसका दूसरा नाम है योग। योग कोई दीवार नहीं बनी है, वैसे लोग जो कुछ भी कहते हो, इसी का नाम योग है। किसका नाम? कि विषय इंद्रियों में, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि अपने प्रकाशक में विलीन हो जाए, सम हो जाए। ये सम हो जाएगी तब क्या होगा? कि त्रिपुटी का नाश होगा। जब त्रिपुटी का नाश होगा, तब इनका जो प्रश्न था वो हल हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का, व्यक्ति का, योग्यता का जो अभिमान होता है, वो त्रिपुटी काल में होता है, त्रिपुटी के नाश काल में नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बोलो देवता है? आपने कहा कि मुझको बहुत कड़ी दवा चाहिए, कड़ा इलाज, कड़ा साधन, ये कड़े साधन की बात है। तो त्रिपुटी नाश बिना हुए कभी भी व्यक्तित्व का अभिमान नहीं गल सकता, और व्यक्तित्व का अभिमान गले बिना ये जो दीनता और दीनता जो अभिमान है ना, दीनत्व और अभिमान, अपने में किसी प्रकार की विशेषता का दर्शन या किसी प्रकार की न्यूनता का दर्शन, ये विशेषता न्यूनता का दर्शन मिट नहीं सकता। इसी यही त्रिपुटी का अभाव प्रेमियों का प्रेम के द्वारा हो जाता है, इसी त्रिपुटी का अभाव, जिसका कि विचारशील का विचार के द्वारा होता है, और इसी त्रिपुटी के अभाव करने के में ही अभ्यासी का अभ्यास निर्भर है। जितने अभ्यास आप करते हैं, उसके मूल में यही, अंत में यही रहता है, इससे आगे अभ्यास की पहुंच नहीं है। और नहीं है तो कोई बताए कैसे है भाई, अभ्यास क्या करोगे? कोई तो इंद्रियों का दमन करेगा, मन का संयम करेगा, बुद्धि को सम करेगा, हैं? और स्वार्थ को सेवा में बदलेगा, राग को त्याग में बदलेगा, द्वेष को प्रेम में बदले, यही ना होगा? तो और कोई अभ्यास होगा? और तो कोई नहीं है ना। अच्छा, इस अभ्यास का फल क्या होगा भाई? इस अभ्यास का फल क्या होगा? इस अभ्यास का फल होगा दोषों की निवृत्ति, हैं? और दोषों की निवृत्ति का फल क्या होगा? निर्दोषता की अभिव्यक्ति। तो दोषों की निवृत्ति में साधन हेतु हुआ, परंतु निर्दोषता की अभिव्यक्ति में कोई साधन हेतु नहीं है, वहां किसी साधन की पहुंच नहीं है। राग को कोई त्याग में बदल सकता है, लेकिन त्याग का जो फल है वो किसी साधन का फल नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। इसीलिए असाधन की निवृत्ति में साधन हेतु है, साध्य की उपलब्धि में कोई साधन हेतु नहीं है। समस्त साधन असाधन की निवृत्ति में हेतु है। तो भाई असाधन सबसे बड़ा क्या है? कौन सा ऐसा असाधन है कि जिसकी हमें निवृत्ति करना है? तो सबसे बड़ा साधन है कि जो जिसे तुम चाहते हो उससे भिन्न की सत्ता को स्वीकार करना। अगर एक ही वाक्य में समस्त असाधनों की बात कही जाए तो अपने लक्ष्य से भिन्न की जिसने सत्ता स्वीकार की उसने असाधन को जन्म दे दिया, चाहे वस्तु है या नहीं, इससे हमें कोई झगड़े की बात नहीं। ये तो मत वालों की बात है भैया, जो मत में आ सकते हैं लड़ते रहे। जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो, जो तुम्हारी मांग है, जो तुम्हारी प्यास है, उस प्यास से भिन्न की सत्ता को स्वीकार करना ही असाधन है। अच्छा, अब अपने प्रिय से भिन्न की सत्ता स्वीकार न करने पर ईमानदारी से कोई बताए कि हमारा मन कहाँ गया? जी हाँ, नहीं है तो साधन क्या रहा? यानी लोग मेरे समझ में, भाई सच्ची बात ईमानदारी की है कि हम लोगों का तो हो गया पेशा बोलना, तो किसी का पेशा बोलना हो गया तो किसी का सुनना भी पेशा ही हो गया है। ये जितने संगठन हैं वो क्या है, अनेक निर्बलताओं के समूह, चाहे गुरु और शिष्य के हों, चाहे नेता और समाज के हों, चाहे किसी प्रकार के हों। संगठन का अर्थ ही है निर्बलताओं का ढेर, कमजोरियों का मजमुआ। हाँ, तो मैंने इसी निवेदन किया कि अगर आप चाहते हैं, आपको जब ये मालूम हो गई, देखिए जीवन का आरंभ कहाँ से होता है, जहाँ से आवश्यकता का ज्ञान होता है। पन्ने के प्यास लगी है तो पानी की सत्ता हो गई ना। अच्छा, प्यास लगने से पहले किसी को प्यास न लगी हो और सारा संसार मिलकर उसको बड़े बड़े विज्ञान वेताओं को इकट्ठा करो है? और उनसे ये कहो कि जिसको प्यास नहीं लगी है उसके उसके अस्तित्व में, उसके जीवन में जरा पानी की सत्ता की स्वीकृति तो कराए दो। है किसी में हिम्मत? जी नहीं करा सकता। सार क्या निकला भाई? सार ये निकला कि अब जिस जो चीज आवश्यकता के रूप में नहीं होती वो प्राप्ति के रूप में कभी होती ही नहीं। यानी जो चीज आवश्यकता के रूप में नहीं है जीवन में उसको वो कभी प्राप्ति में होगी ये बात कभी संभव नहीं है। प्राप्त क्या होगा? जो आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, तो जिसे अपनी आवश्यकता का ज्ञान है, ठीक ठीक, और आवश्यकता का ज्ञान सुनने से होगा क्या? अरे किसी से पूछो कि भाई देखो टट्टी लगी है, बोले अच्छा हम सिखाते हैं, सीख लोगे टट्टी लगी है? सीख लोगे? आप फील कर लोगे टट्टी लगना कैसा होता है? उनने कहा भाई भूख तो भी लगी, लगी तो नहीं है? अरे नहीं, हम सिखाते हैं, देखो कहो मानो कि हम भूखे हैं। तो आजकल तमाशा हो गया है सत्संग नहीं, मैं सच कहता हूँ आपसे भाई। देखो जब लोग मुझसे मेरे मन की बात पूछते हैं तो मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है और दिमाग टेढ़ा, इसमें बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। मैं इतना मधुर नहीं हूँ जो कि बातचीत करने में व्याख्यान में खुशामद में नहीं कर सकता, वैसे रात तुम्हारे चरण छू लूं। क्यों? व्याख्यान होता है वक्ता के अपने मन की बात, तो झूठ बोले तो खुशामद करे, और जितने झूठ बोल के ही खुशामद कर पाते हैं। हाँ हाँ, राजी करते हैं ना, चेला नाराज हो जाए महाराज सब काम बिगड़ जाए, संसार टूट जाए एकदम। तो जानते हैं भीतर से खूब जानते हैं ये बात गलत है, लेकिन नहीं कह पाते, हिम्मत नहीं होती। तो भाई जिसे आवश्यकता का ज्ञान नहीं है उसे आप उस चीज को प्राप्त करा दोगे जिसकी तुम बात कहते हो? नहीं करा सकते। अच्छा, और किसी में कोई आवश्यकता पैदा हो जाए तो किसी की हिम्मत है उसे मिटाए दे? ये किसी को प्यास लगी हो, सारी दुनिया मिलकर हाथ जोड़े भैया तुम प्यास मिटाया, प्यास मत, पानी मत पियो, पानी मत पियो, पानी का चिंतन मत करो। अरे आप गोली से मार दो लेकिन प्यासे को आप में हिम्मत नहीं है जो ये करा दे कि पानी का चिंतन नहीं करेगा। तो आवश्यकता जब जागृत हो जाती है तो किसी के मिटाने से मिटती नहीं, और आवश्यकता जब तक जागृत नहीं होती तो किसी के कराने से होती नहीं। यही ना झगड़ा है सरकार। मैं आपसे कहता हूँ अगर भूले हैं तो आप ही याद करोगे, कोई नहीं करा सकता। और नहीं, जरूरत नहीं थी आप लोगों को कष्ट देने की, जरूरत नहीं थी। अगर कोई करा सकता किसी में आवश्यकता की जागृति तो कराए देता, न उपदेश की जरूरत, न प्रचार की जरूरत, न कहने की, न आने की, न जाने की। यही तो लोग धोखा देते हैं, धोखा देते हैं अपने को। हाँ, आप प्राचीन पद्धति पर जरा गौर फरमाए। प्राचीन पद्धति क्या है? किसी को जरूरत हुई और जरूरत होने के बाद किसी महापुरुष के पास गया और उसने कहा कि सरकार मेरी ये दशा है, उसने एक बात कह दी, चुपचाप सुन के चला आया और उसी में लग गया, कठिनाई पड़ी, फिर दोबारा गया, फिर एक बात कह दी, ये क्रम था। प्राचीन क्रम ये था, जिस पद्धति के हम लोग गीत गाते हैं, जिसके नाम पर हम लोग अपना पेशा चलाते हैं, उस पद्धति में ये है ही नहीं कि तुम भगवान को मान लो, तुम्हारी सौ बार कर दे मान लो, क्यों मान लो, कि तुम आत्मा को मान लो, तो हमारी पद्धति को मान लो, ये तो पेशेदारों की बात है हम लोगों की, उनमें मैं भी उन्हीं में हूँ, मैं कोई उससे बाहर नहीं हूँ, यानी जिनकी बात कह रहा हूँ उनसे अलग मानकर अपने को नहीं कह रहा हूँ। तो भाई पेशेदारी की बात तो होती है अलग, तुम भी उलझे रहो, हम भी उलझे रहे, हमने सुना तुम्हें सुना दिया, हमसे हुआ नहीं तुमसे होगा नहीं। कर इतनी बात बनती कहते तो कहने का मेरा प्रयोजन ये था कि भाई जो चीज आवश्यकता के रूप में होती है उसी की प्राप्ति होती है, तो अपनी आवश्यकता से भिन्न की सत्ता स्वीकार मत करो, क्या थोड़ा विश्वास ले लो। एक महिला से सुना, बहुत बच्चा का था मैं, तो उनके पति का चरित्र अच्छा नहीं, तो जब उनकी सारी बातें मुझसे शिकायत करें, मैं भी बच्चा था, क्योंकि एक नियम है बड़ा भारी कि मन की बात अगर किसी से कह दो तो मन हल्का हो जाता है, तो कहेंगे देखो तुम्हारे भैया ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, तो हमने कहा बड़े खराब हैं, स्वाभाविक बात है ये, तो वो कहें पीछे से कहें अंत में ये सब कुछ बुराई कर करा के पीछे से कहें तो फिर मेरा और किसी से क्या मतलब है, आखिर मुझे तो उन्हीं के साथ न रहना है। तुमने ये बात तो ठीक है, बात बहुत बढ़िया। तो कल्पना करो संसार भले ही हो, मैं नहीं कहता हूं कि है या नहीं है, क्योंकि ये है मत वालों की बात, कोई कह देगा है कोई कह देगा नहीं है, फिर उस पर विवेचन करेंगे, पर है तो ऐसा है ऐसा है। भगवान हो चाहे न हो, संसार हो चाहे न हो, आत्मा हो चाहे, झगड़े की बात बिल्कुल नहीं। अगर आपको भगवान की आवश्यकता है तो भाई संसार की सत्ता स्वीकार मत करो, अगर आपको आत्मा की आवश्यकता है तो संसार की सत्ता स्वीकार मत करो, और अगर आपको संसार की आवश्यकता है तो बुरा मत मानना, भगवान नाराज नहीं होगा, वो मेरा दोस्त है और मैं ईश्वरवादी होकर ये कहने का दावा करता हूँ, खुश होगा भगवान उस ईमानदार नास्तिक से जो कहते हैं भगवान तुम नहीं चाहिए हमें तो संसार चाहिए। तो इस आप में भगवान क्यों खुश होगा आपको मालूम, भगवान किस पर रिझता है, सरलता पर, चतुराई पर नहीं रिझता, इसलिए चतुर कोई भगवान से नहीं मिला आज तक, सात दरवाजे तक रहते हैं। रंग महल के भीतर प्रवेश चतुरों का नहीं होता। आप कहेंगे गीता में तो लिखा है कि भक्त के लक्षण में दक्ष लिखा है, ऐसा कहेंगे आप? हाँ, जरूर कहेंगे और मान भी लेंगे, और मैं भी कह दूंगा हाँ भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, परंतु वो उससे ज्यादा ठीक है कि चतुर का प्रवेश भगवान में नहीं होता। तो जिसको भगवान की आवश्यकता है वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हो जाए कि संसार अगर है तब भी मैं उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा, और नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। जिसको भगवान की आवश्यकता है, अभी हमारे इकबाल भाई ने सवाल कर दिया कि जिसको भगवान की भी आवश्यकता न हो और संसार की भी आवश्यकता न हो वो क्या करे, कि वो किसी की सत्ता स्वीकार न करे। तो जो किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता मालूम उसका फल क्या होता है, कि जो है वो तो रह जाता है, जो नहीं है वो मिट जाता है, ये एक नियम है। तो किसी की सत्ता स्वीकार न करे ये ताकत किसमें आएगी भाई, ये ताकत आएगी किसमें, ये ताकत उसमें आएगी कि जिसने है को प्राप्त कर लिया हो और नहीं से निवृत्त हो गया हो। भूखे आदमी से कहो कि भोजन की सत्ता स्वीकार मत करो, है हिम्मत की बात जी, कोई प्यासे आदमी से कहो कि पानी की सत्ता स्वीकार मत करो, तो जो कुछ भी चाहता है और वो ये कहे मैं किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा, ये उसके बस की बात नहीं है। अच्छा, संसार की सत्ता स्वीकार करोगे उससे सुख की आशा के लिए, उसकी सेवा के लिए, अगर कोई कहे कि मैं तो संसार की सत्ता स्वीकार करूंगा और उससे सुख की आशा करूंगा, तो भैया तुम्हें नहीं मिलेगा, ये संसार का विधान है, इसे तुम नहीं बदल सकते। हाँ, आप कहें कि मैं भगवान की सत्ता नहीं स्वीकार करूंगा और आत्मा की सत्ता नहीं स्वीकार करूंगा, संसार की सत्ता स्वीकार करूंगा, लेकिन संसार की सेवा करने के लिए, तब एक साधन प्रणाली आरंभ हो सकती है, वो भी एक साधन है, असाधन नहीं है। कल्पना करो कि अगर किसी की समझ में नहीं आता भगवान है, किसी को विश्वास नहीं होता, तो आप उसको मजबूर क्यों करते हैं, उसे असाधन क्यों बताते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती, कि जिस संसार की आप सत्ता स्वीकार करते हैं उस संसार से सुख की आशा करते हैं या उसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर सुख की आशा करते हैं तो दुख भोगना पड़ेगा, कीजिए सुख की आशा, कानून है, जिसने सुख की आशा की उसको दुख भोगना पड़ा है, भोगना पड़ता है, इससे आप नहीं बच सकते। कि भाई हम दुख नहीं भोगना चाहते, तो भैया सुख की आशा का त्याग करो। बोले हम सुख की आशा का त्याग नहीं कर सकते, तो बोले भैया दुख से नहीं बच सकते। एक अटूट बात है, बदल नहीं सकती। तो सुख की आशा करने वाला दुख से बचना चाहे ये कभी संभव नहीं है। अच्छा, तो संसार की सत्ता हमने स्वीकार की और सेवा करने के लिए स्वीकार की, तो हम संसार की क्यों सेवा करें, भगवान की क्यों न करें? तो कौन मने करता है कि तुम न करो? कोई मने तो नहीं करता। लेकिन एक बात है भैया, कि जिसकी तुम सेवा करोगे वो भगवान हो जाएगा। क्यों? सेवा का अधिकारी भगवान है। आप कहेंगे कैसे? ये भी एक पहेली है। बोले हमने संसार की सत्ता स्वीकार की और उससे भगवान मिल जाएगा। ये कैसे मिल जाएगा? कि ऐसे मिल जाएगा कि सेवा का अधिकारी कौन होता है पहले ये सोचो। सेवा के दो अधिकारी होते हैं, एक तो दुखी और एक अनंत। दो स्तरों में सेवा बढ़ती है। कैसे? कि दुखी जो होता है उसे तो सुख चाहिए, और सुख का संबंध है भी दुख के साथ। जैसे कोई कहे सुख माने क्या? अरे भाई, संग्रह का दूसरा नाम सुख है, सुख और कोई चीज नहीं है। आप सुखी इसलिए कि आपके पास मकान बहुत है, आप सुखी इसलिए कि आपके पास संपत्ति बहुत है, आप सुखी इसलिए कि आपके पास योग्यता बहुत है। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारी संपत्ति संपत्ति के काम आएगी कि निर्धन के? अरे दो संपत्ति वाले मिलकर कभी मित्र होते देखे आपने? यानी दो आदमी करोड़पति हों और दोनों को जरूरत हो कि हमारे कपड़ा धोए दे, नौकर मिलेगा? दोनों मर जाए से। अच्छा, और दो बिल्कुल बिल्कुल बेसामान के हो, कुछ न हो, है कोई वस्तु न हो, कोई सामान न हो, तो दोनों जिंदा रहेंगे? दोनों खत्म हो जाए तो सृष्टि कब चलती है भाई? कि किसी अंश में कोई सुखी हो, किसी अंश में कोई सुखी हो, और किसी अंश में कोई दुखी हो, किसी अंश में कोई दुखी हो, तभी ना सृष्टि चलती है। तो दो आवश्यकताएं एक स्थान पर आ जाती है, वहां संगठन बन जाता है। तो जो हमसे दुखी है जिस अंश में, उस अंश में वो हमारे सुख का हकदार है। अरे ये बात तो कहना जरा बहुत छोटे स्तर की है। ईमानदारी की बात यह है कि हमसे जो दुखी है और हमारे पास जो सुख है वो उसी का है। यानी सुख जितना है वो दुखी का है, और जो सुख को अपना मानते हैं, दुखी का नहीं मानते हैं, वो हमेशा सुख के दास होकर जड़ता में आबद्ध हो जाते हैं। ये उसका फल है। अगर हमने सुख को अपना माना, दुखी का नहीं माना, उसका परिणाम होगा कि वो सुख हमको दुखी बना देगा। क्यों? सुख तो सुख का संबंध दुखी के साथ। जो सुख को भोगे वो दुखी हो जाए, जो सुख को इकट्ठा रखे दुखी को न बैठ दे वो दुखी हो जाए, और जो सुख को दुखी को दे दे वो आनंद में पहुंच जाता है। ऐसा नियम है। इस दृष्टि से जो हमसे दुखी है वो हमारी सेवा का पात्र। एक तो ये नियम निकला। ये किसका नियम है? ये हम साधारण प्राणियों का, जो इंद्रिय जन ज्ञान पर ही विश्वास करते हैं और जो संसार की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। संसार की सत्ता स्वीकार करने वालों के लिए ये महामंत्र है। कोई कितना ही चतुर हो, कितना ही बुद्धिमान हो और सुख अपने लिए और अपने लड़के के लिए समझता हो, देखो एक बात बताऊं आपको, बालिग लड़के के लिए जो धन इकट्ठा करके जोड़ता है जो बाप, वो लड़के को तो नरक में भेजता ही है, स्वयं भी जाता है। ईमानदारी की बात है ये। क्यों? लड़के नाबालिग की है संग्रह की हुई संपत्ति, नाबालिग की, चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे तुम्हारे भाई का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे किसी का हो। बालिग व्यक्ति की संपत्ति, संग्रह की हुई संपत्ति किसी बालिग की नहीं है, नाबालिग की है, बालक की है, रोगी की है, विरक्त की है। विरक्त माने कोई मेरे जैसे विरक्त की बात नहीं, जिसको विषयों से अरुचि हो गई हो। क्यों? वो सत्य के अवेषण क्या कहते हैं, हाँ उसमें लगा है। अरे एक ही बात है, कोई भी बोल दे उसमें लगा है, उसको अवकाश नहीं है। और रोगी असमर्थ है, बालक असमर्थ है। तो जितना सुख संपादन है किसी के पास भी, वो दुखी की धरोहर है, और उसको ईमानदार समझा है उस विधान ने, जिसने उसे दिया है, उस विधान ने उसे इसकी ईमानदारी पर विश्वास किया है, इसलिए उसको कहा भाई तुम दुखियों को बांट देना। तो जब हम अपना सुख दुखी की धरोहर समझकर उसको वापस कर देते हैं, ये क्या है? ये दुखी के ऊपर करुणा नहीं है, ये पूजा है, तुम्हारी पूजा। दुखी जो है वो पूजा का अधिकारी है, आदर का अधिकारी है, प्यार का अधिकारी है। क्यों? उसके पास प्यार का भी अभाव रहता है। दुखी को लोग कम ही प्यार करते हैं। दुखी माने किसी अंश में दुखी हो। तो ये सुख के द्वारा दुखी की पूजा की, उस पूजा का फल है मालूम क्या होगा कि वो जो दुखी है वो तुम्हें दुखहारी से मिला देगा। दुखी में सामर्थ्य है कि भगवान से मिलाए दे, तत्व ज्ञान कराए दे। मैं सच कहता हूँ वहां से, ये सामर्थ्य दुखी में ही है। अच्छा कोई ये कहे कि हम आपकी बात इसे नहीं मानते कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों को तत्व ज्ञान हुआ और उन दुखियों की सेवा नहीं की तो वो खुद दुखी हुए होंगे, वो खुद दुखी हुए होंगे। एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं बता सकते कि जिसके जीवन में सर्वांश में दुख ना गया हो, एक अंश में नहीं सर्वांश में दुख। जैसे भगवान बुद्ध के जीवन को रखो सामने, राजकुमार थे, राजकुमार राजा से ज्यादा सुखी होता है, सुंदर स्त्री थी, सुंदर बालक था, सुख सामग्री सब मौजूद थी, और उनको जिस वक्त ये मालूम हुआ कि ये मेरी जवानी मौत की तैयारी है, ये संयोग वियोग की तैयारी है, जिस वक्त ये मालूम हुआ उस समय उनके जीवन में कितना गहरा दुख था पता लगाओ, जितना गहरा दुख था। और वो दुख मालूम है तप के द्वारा उस दुख को दबाया गया, नहीं दबा, लेकिन जिस वक्त तप भी उन्हें दुखद हो गया और जिस वक्त ये बात आई कि अब ये दुख जो है अगर नहीं मिटता है तो मैं किसी प्रकार सहन नहीं कर सकता, असह्य दुख, जिस समय भगवान बुद्ध को असह्य दुख हुआ उसी समय भगवान बुद्ध भगवान हो गए। हैं? तो दुख के बिना, दुखियों की कृपा के बिना, इसीलिए कहता हूँ सुखी और सुखियों को का साम्राज्य ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता कभी, बिल्कुल सही बात है। तो सुखी का अर्थ यहाँ कोई अच्छे अर्थ में लेते हैं, आनंद के अर्थ में लें, वो मेरा मतलब नहीं है। सुख का मतलब मालूम क्या है, कामना पूर्ति के जाल में फंसा हुआ प्राणी सुखी कहलाता है। कामना पूर्ति का जो जीवन है, हम जो चाहते हैं वही हो जाता है, ये सुख का जीवन है। तो इस जाल में जो फंसा है, मैं तो कहता हूँ भगवान पर उसकी बड़ी कृपा समझना चाहिए कि जिसके मन की बात कभी पूरी न हो, उससे बड़ा भगवान का कृपा पात्र कोई नहीं। और सच पूछिए कि भगवान से सबसे अधिक दूर वही रहता है जिसके मन की बात पूरी होती रहे, उसका उसको फुर्सती नहीं होती भगवान के साम्राज्य में जाने की। जिसके मन की बात पूरी होती रहती है वो भगवान से बहुत दूर रहता है। लेकिन एक बात है, वो किसी न किसी के जिसके मन की बात पूरी होती है ना, वो होता है बेचारा प्राण पराधीन, उसका नाम पराधीन प्राणी। जिसके मन की बात पूरी होती रहे समझ लो वो पराधीन है। उस पराधीन प्राणी का स्वभाव होता है किसी न किसी के गीत गाते रहना, किसी न किसी की महिमा गाते रहना। ऐसी दशा में सुखी आदमी कभी भगवान की महिमा गा लेता है बेचारा, और कभी कहता है मेरा भाई बड़ा अच्छा है, कोई कहता है मेरी स्त्री बड़ी अच्छी है, कोई कहता है मकान मुझे बड़ा सुंदर मिला है, कोई कहता है मेरा काम ठीक चल रहा है। यानी सुखी आदमी का काम है दूसरे की स्तुति करते रहना, प्यार व्यार कुछ नहीं। अगर 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 एक, एक, एक माता जी ने बड़ी सेवा की, भगवान की बड़ी पूजा की, पति था बीमार अच्छा हो गया, बड़ी आस्तिक हो गई, दोबारा बीमार हुआ फिर पूजा की, पति मर गया ठाकुर जी उठा फेंक दिया। तो ये जो सुख का पुजारी किसी से दोस्ती करे समझ लो उसकी दोस्ती किसी भी दुश्मनी से कम नहीं है। क्यों? ये कभी अपना नहीं होगा, कभी अपना जो जो सही काम लेने वाले मालिक लोग होते हैं ना, अगर अगर वो काम गलत करे तो नौकर फोन निकाल दे और फिर बिल्कुल न रखे, अब ऐसे बड़ी तारीफ करें सही आदमी की। तो ये जो इस तरह की जो तारीफ होती है, इस तरह की जरूरत होती है, वो जरूरत कभी रहने वाली नहीं होती, हमेशा हटा देने वाली होती है। तो तात्पर्य यह था कहने का कि भाई सुख इतनी अच्छी चीज नहीं है, वो तो दुखियों की धरोहर है। तो एक तो सेवा का पात्र हुआ दुखी, और दूसरे सेवा का पात्र कौन हुआ भाई? भगवान। वही सेवा जब भगवत बुद्धि से की जाती है, वही सेवा, तब क्या मालूम क्या होता है? तब उसका नाम पूजा हो जाता है। और वही सेवा फल की आशा को लेकर की जाती है तब मालूम उसका नाम क्या होता है? पुण्यकर्म हो जाता है। प्रवृत्ति एक, वो पुण्यकर्म भी बन गई, सेवा भी बन गई, पूजा भी बन गई, फल भी तीनों का अलग अलग। पुण्यकर्म से उत्कृष्ट परिस्थिति की प्राप्ति, उत्कृष्ट परिस्थिति की प्राप्ति, सेवा से चित्त की शुद्धि, और पूजा से प्रेम की प्राप्ति। अब आप विचार कीजिए, बहुत धीरज के साथ विचार कीजिए कि एक ही प्रवृत्ति जो उत्कृष्ट भोगों की ओर ले जा सकती है, वही प्रवृत्ति चित्त शुद्ध करा सकती है, और वही प्रवृत्ति प्रेम प्राप्त करा सकती है। लेकिन कब प्रेम प्राप्त कब होगा? जब आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा बन जाए, पूजा। ये न मालूम पड़े आपको कि हम कमरा झाड़ रहे हैं, बल्कि ये मालूम पड़े कि हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये न मालूम पड़े कि हम बच्चे का काम कर रहे हैं, बल्कि ये मालूम पड़े कि हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। हर प्रकार से परिस्थिति के अनुसार, विधान के अनुसार, रुचि के अनुसार प्रत्येक प्रवृत्ति प्रभु की पूजा बन जाए। तो पूजा का अर्थ लोग समझते होंगे, कोई कहे साहब ये बड़ी पूजा करते हैं, हमको दिन के 3 बजे तक हम पूजा करते हैं, कोई कहे हम रात के 12 बजे तक करते हैं, हम कहे भैया 23 घंटा करते हो, 59 मिनट करते हो, 59 सेकंड करते हो और 1:07 सेकंड नहीं करते हो तो आप पूजा नहीं करते हो। आप कहेंगे बड़े बेसमझ आदमी हो, इतने अच्छे साधक को लेकर कहते हैं कि पूजा नहीं करते हैं। भाई पूजा का कभी अंत नहीं होता भैया, और पूजा में कभी विवधान नहीं होता। पूजा ऐसी चीज नहीं है जिसका अंत कभी हो और जिसमें कभी विवधान पड़े आकर कि अभी जब बोल रहे थे तब तो पूजा कर रहे थे, अब चुप हो गए तब ऐसा पूजा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई कोई काम कर रहे थे तब तो पूजा नहीं कर रहे थे, बोले ध्यान कर रहे थे तो पूजा कर रहे हैं। तो जो लोग पूजा को और जीवन को में जो भेद कायम कर लेते हैं कि 6 घंटे पूजा के, बोले 6 घंटे दुनियादारी के, बोले 6 घंटे खाने पीने के और बोले 6 घंटे मौज करने के, वो पूजा है ही नहीं। यानी पूजा की बात कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि पूजा माने कि वो प्रवृत्ति जो प्रेम के उत्पादन में हेतु बन जाए, यानी प्रेम प्रदान करने में जो प्रवृत्ति हेतु होती है उस प्रवृत्ति का नाम पूजा। तो भाई प्रेम को, प्रेम प्राप्ति क्यों पूजा, उसका नाम पूजा क्यों है? बोले इसलिए पूजा है कि पूजा का फल क्या है। पूजा किसे कहते हैं? कि अपने पूज्य को, जो अपना पूज्य माने क्या, कि जिसके लिए अपने को निछावर कर सकें। देखो भाई वस्तु को निछावर कर सकते हैं प्राणी अपने लिए, अपने लिए, जैसे अपने लिए वस्तु को निछावर कर सकता है, पर अपने को जिसके लिए निछावर कर सकता है उसको पूज्य कहते हैं। वैसे तो हमारे पत्रों में बहुत आता है पूज्य स्वामी जी महाराज, लेकिन वो तो एक आर्टिफिशियल बात है, खाली लिखने की बात है। पूज्य माने जिसके लिए हम अपने को निछावर कर सकें। पूजा का असली अर्थ होता है जिस पर अपने को निछावर कर दिया जाए, अपने को दे दिया जाए। तो जब अपने को देने का अर्थ क्या होता है भाई? कोई कहे साहब बहुत से लोग हमको अपने को देने को राजी हैं। बोले क्यों? बोले महाराज देखिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, ठहरने का कर दीजिए और हम जो चाहें पूरा कर दीजिए और हमने अपने को आपको दे दिया। तो इस तरह का तो सभी सबको देने को राजी हैं। अपने को देने का अर्थ होता है कि आपका दिया हुआ जो दुख है वो तो हमारी खुराक रहेगा है? और हमारा जो कुछ है उस पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। अपने प्रिय का दिया हुआ दुख अपना जीवन हो और अपने पास जो कुछ हो वो उनका हो, यह है अपने को देना। और यही असल में पूजा, इस पूजा का फल होता है प्रेम। और प्रेम, प्रेम जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रेम तो एक रस का दूसरा नाम है और वो एक ऐसा अलौकिक रस है कि जिसमें कभी, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती और जिसकी कभी निवृत्ति नहीं होती और जिसमें कभी क्षति नहीं होती। यानी जो क्षति से रहित हो, पूर्ति से रहित हो और निवृत्ति से रहित हो, उस रस का नाम है प्रेम। और वो रस प्रभु को भी अभिष्ट है और प्रेमी को भी अभिष्ट है, सबको अभिष्ट है। वैसे तो रस कहते हैं उसको है कि जो सभी को अभिष्ट हो, लेकिन प्रेम का जो रस है वो प्रभु को बड़ा प्यारा लगता है और वो पूजा से प्राप्त होता है। तो पूजा का अर्थ हुआ कि प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा अपने प्रियतम को सुख देने की लालसा। सुख दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो अपने बस की बात नहीं है ना, लेकिन लालसा प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा। प्रत्येक प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि कोई खास प्रवृत्ति हो जो करते हैं आप, जिसके बिना करे आप रह ही नहीं सकते, वो प्रवृत्ति। सवेर प्रातः काल जब से आपकी जागृत से लेकर सुसुप्ति पर्यंत और जब से आपको मालूम होता है कि हम कुछ करते हैं, मरण पर्यंत प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा पूजा हो। लेकिन कब होगी भाई? जब वस्तु बुद्धि नाश हो जाए, व्यक्ति बुद्धि नाश हो जाए और भगवत बुद्धि की स्थापना हो जाए। तो प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना और उनकी पूजा करना, उसका फल होगा प्रेम, जो कि अनिर्वचनीय है।
जो व्यक्ति अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानता है, उसके जीवन में से राग निकल जाता है। और जो व्यक्ति अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता है, उसके जीवन में से द्वेष निकल जाता है। राग के अभाव में योग और द्वेष के अभाव में प्रेम। प्रेम योग और प्रेम के बीच में बोध। किसका बोध? जिससे हुआ योग उसका बोध। किसमें प्रेम? जो है उसमें प्रेम। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन जिस परिस्थिति में है, जहां है, जैसे है, उसी परिस्थिति में वहीं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति में हम और आप पराधीन नहीं हैं। राज की भूमि में उपजने वाले कामनाओं की पूर्ति में स्वाधीन नहीं है। राग की भूमि में उपजने वाली कामनाओं की पूर्ति में स्वाधीन नहीं है और राग रहित होने पर योग बोध प्रेम की प्राप्ति में पराधीन नहीं है। अब आप बताइए कि राग रहित होने के लिए भी कोई सामान अपेक्षित है? बताओ, कोई सामान अपेक्षित है राग रहित होने के लिए? कोई साथी की अपेक्षा है जी? किसी देश काल की अपेक्षा है? भूत भविष्य की अपेक्षा है कि धीरे धीरे राग रहित होंगे? राग रहित होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। तो अपेक्षा क्या है? कि जिस प्राप्त वस्तु में ममता कर ली है वो दूसरों को दे दो, उनकी सेवा में लगा दो, और जो अप्राप्त वस्तु है उनकी कामना छोड़ दो। अप्राप्त की कामना का त्याग, क्योंकि कामना करने से कोई अप्राप्त वस्तु मिल तो जाएगी नहीं, और भाई ममता करने से कोई वस्तु बनी तो रहेगी नहीं। इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है कि बड़ी भारी क्षति की बात हो। तो प्राप्त वस्तु में ममता न करो, अप्राप्त वस्तु की कामना छोड़ दो, प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग न करो और सदुपयोग के फल की आसक्ति न रखो। जो वस्तु प्राप्त है हमने उसका सदुपयोग किया, इससे बड़ा फल बनेगा। जो किए हुए का फल चाहता है, जो किए हुए का फल चाहता है, वो करने के बंधन से मुक्त नहीं होता। ऐसा नियम है। उस कर्म का फल चाहने वाला व्यक्ति कर्म का दास रहता है और फल चाहने वाले व्यक्ति का कर्म दास होता है। इसलिए किए हुए का फल मत चाहो, बने चाहे न बने, आए चाहे न आए, पर चाहो मत। जब नहीं चाहोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये निस्संदेह बात है। बंधन का कारण मिले हुए की ममता है, किए हुए की फलाशक्ति है, और अप्राप्त की कामना है। तीन बातों से बंधन होता है, मिले हुए की ममता, किए हुए का फल और अप्राप्त की कामना। आप नोट कर लो, समझ लो, जिन्हें मुक्ति चाहिए ना वो व्याख्यान सुनने के बाद उठ जाए। भाई बुरा मत मानना, कोई पूर्ण वक्ता नाराज हो जाए, मैं तो बड़े हित की बात से कहता हूं। और उठ करके ये नहीं जाके सोए, एकांत में बैठ जाएं, मोक्षार्थियों से बात है ये। और वो एकांत में 24 घंटे तो कम से कम सोचें, खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, सब छोड़ करके बैठ के सोचें। और इन तीन बातों को मानने के बाद मुक्त होकर ना आए तो हमें गंगा में फेंक दें, ये निश्चित बात। देखें कौन से मोक्षार्थी हैं, दिखाई तो दें। तो भैया, मिले हुए की ममता का त्याग, किए हुए के फल का त्याग और अप्राप्त की कामना का त्याग, ये मुक्ति का सहज साधन है, सुगम साधन है। जिन्हें मुक्ति चाहिए वो मुक्ति खरीद लें, और जब वो मुक्ति में संतुष्ट नहीं होंगे तब अपने आप भक्ति मिल जाएगी। भक्ति जो है ना, ये मुक्ति के फल में रस है। देखिए, भक्ति और कुछ नहीं है, मुक्ति एक फल है, महान फल, अमर फल जैसे कहते हैं ना, वो अमर फल है। और उस अमर फल में कोई छिलका नहीं है, गूदा नहीं है, छिलका गूदा नहीं है, बीज नहीं है। आसक्ति भी एक फल है, उसमें छिलका भी है, गूदा भी है, बीज भी है, बड़ा लंबा चौड़ा वृक्ष बनता है हमारा, है अनंत काल तक वृक्ष बनता रहेगा। लेकिन मुक्ति एक ऐसा फल है जिसमें छिलका नहीं, गूदा नहीं, केवल रस है। और वो जो रस है ना, उसी का नाम भक्ति है। मुक्ति रूप फल में जो रस है वो भक्ति है। तो जिसे मुक्ति रूप फल प्राप्त हो जाता है उसे भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो ये पहले ही से मान ले कि मुझको भक्ति नहीं चाहिए, अगर भक्ति नहीं चाहिए भाई तो मजबूरी है। लेकिन ये कब तक कहेगा? जब तक मुक्ति मिली नहीं है। जब मुक्ति मिल जाएगी तो वो विवश हो जाएगा भक्ति के लिए। इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई भक्त वही हो सकता है जो मुक्त है। जो किसी वस्तु को अपना मानेगा भला वो भगवान को अपना मानेगा? जो किसी व्यक्ति को अपना मानेगा वो भगवान को अपना मानेगा? कभी नहीं मान सकता। और जो भगवान को ही अपना नहीं मान सकता बताइए भक्त हो कह सकता है? तो भक्ति क्या है? जो मुक्ति के बाद जो उसका फल है, मुक्ति का जो फल है वो भक्ति है। लेकिन इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मुक्ति घटिया है और भक्ति बढ़िया है, ये मेरा मतलब नहीं। ये तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि व्याख्यान का अर्थ ही है कि वक्ता ईमानदारी से अपनी बात कह दे, ये तो व्याख्यान की बात। और प्रश्न उत्तर की बात यह है कि भाई जो पूछे उसका उत्तर दे दे। तो आप लोग प्रश्न करते नहीं, अब व्याख्यान देना ही पड़ता है। तो जब देना ही पड़ता है तब ये कहना पड़ता है कि भाई मुक्ति रूपी फल में भक्ति रूपी रस है, और इन तीन चीज का देखो विभाजन नहीं होता कभी। कोई ये चाहे कि जहां वास्तविक जहां योग है, योगी वाला योग नहीं, ज्ञानी वाला ज्ञान नहीं, प्रेमी वाला प्रेम नहीं, जहां प्रेम है प्रेमी नहीं, ज्ञान है ज्ञानी नहीं, योग है योगी नहीं, उन तीनों में एकता है। ये तीन हमारे प्रभु की विभूतियां हैं, प्रभु की तीन विभूतियां हैं, योग ज्ञान और प्रेम। और व्यक्ति की विभूतियां मालूम है कौन कौन सी हैं? प्राप्त को अपना मत मानो, बड़ी सुंदर विभूति है। अप्राप्त की कामना मत करो, बड़ी सुंदर विभूति है। और किए हुए का फल मत चाहो, बड़ी सुंदर विभूति। मिले हुए का सदुपयोग करो और उसका फल मत चाहो, बड़ी सुंदर विभूति है ये है। और जो अप्राप्त है उसकी कामना मत करो, बड़ी सुंदर विभूति है ये। और जो प्राप्त है उसे ममता मत करो। तो हमारी ये तीन विभूतियां और प्रभु की वे तीन विभूतियां, तो जब हम अपनी इन तीन विभूतियों को ठीक अपना लेते हैं तो प्रभु अपनी तीन विभूतियां हमें दे देते हैं खुश होकर। ये प्रभु का स्वभाव है। और अगर ये बात उनमें न होती तो ईश्वरवाद की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर बिना मांगे योग बोध और प्रेम न देता होता तो मैं पहला आदमी था कहता ईश्वरवाद की संसार में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई ये अपनी जो तीन विभूतियां अपनी हैं कि हम मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किए हुए का फल नहीं चाहेंगे, प्राप्त को अपना नहीं मानेंगे, अप्राप्त की कामना नहीं रखेंगे, बताओ इसमें क्या कठिनाई है? कोई भाई बताए, कोई बहन बताए, आपको मानना ही पड़ेगा, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए भाई मेरे साधन में कोई कठिनाई नहीं है, साधन में कोई अस्वाभाविकता नहीं है, और साधन में असिद्धि और असफलता भी नहीं है। इस दृष्टि से हम सब आज इस बात पर विचार करें कि सुने हुए ईश्वर में हम विश्वास कर सकते हैं, जाने हुए जगत की ममता तोड़ सकते हैं, मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं, अप्राप्त की कामना से रहित हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो हम सबको सिद्धि मिल सकती है, भूतकाल चाहे जैसा रहा हो, चाहे जैसा रहा हो, आप परवाह न करें। हमारे प्रभु वर्तमान देखते हैं, भूतकाल किसी का नहीं देखते हैं। और अगर वे भूतकाल देखना पसंद करें तो उन्हें दुनिया में न कोई भक्त मिलेगा, न मुक्त मिलेगा, न कोई साथी मिलेगा, अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। इसलिए भाई भूतकाल चाहे जैसा रहा हो। आज हम लोग रास्ते में आए थे, एक बात कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात, कि अगर तुम निर्दोष होना चाहते हो तो किसी में दोष का आरोप मत करो, और अगर दोष की उत्पत्ति से बचना चाहते हो तो गुण का भोग मत करो। जो गुण का भोगी नहीं, जिसने किसी और में दोष का आरोप किया नहीं, वो महान निर्दोष है, महान निर्दोष है और हो सकता है। इसलिए भाई गुण का भोग और अन्य में दोष का आरोप, यही एक अपना बनाया हुआ दोष मुझे मालूम होता है, आपकी बात नहीं जानता। यदि हम अपने बनाए हुए इस दोष का अंत कर दें कि हम किसी में दोष का आरोप नहीं करेंगे और गुण के भोगी नहीं बनेंगे। गुण के भोगी न हो, किसी और में दोष का आरोप न करें, बस बेड़ा पार है। न कुछ करना है न धरना है, और प्रभु विश्वास लेकर शांत और प्रसन्न रहना है, और समस्त विश्वासों का अंत कर है को प्राप्त करना है, और मिले हुए के सदुपयोग के द्वारा प्रभु की पूजा करनी है, सुंदर समाज का निर्माण होना है, वो अपने आप हो जाएगा। इसमें लेस मात्र भी संदेह की बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि जिन भाई का ये प्रश्न था कि जीव ईश्वर के समर्पण होता है तो जीव नहीं होता, अहम प्रभु के समर्पण होता है, मम प्रभु के समर्पण होता है, और अहम और मम के समर्पण होने से योग बोध प्रेम की प्राप्ति होती है। जिन भाई ने ये कहा था कि भाई जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं चाहेंगे, कोई वस्तु हमारी नहीं है, प्रभु हमारे हैं, हमको भय लगता है, ये इसलिए भय लगता है कि वे मन को अपना मानकर ये बात कहते हैं। मन के द्वारा ये बात मत सोचो, बुद्धि के द्वारा ये निर्णय मत करो, स्वयं स्वीकार करो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्तु मेरी नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे हैं, आनंद ही आनंद है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। बात भी इसी का नाम ईश्वरवाद है। आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओ